जिस किस्म का आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ है काफी शॉकिंग है।
देखें ये ऐसी कोई बात नहीं है, बोर्ड से कोई डील नहीं है,
कोई ऐसी डील नहीं हुई है।
दर्शक आपको सपोर्ट करने आते हैं दुनिया भर से, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं?
बात वही है कि अपने गोल्स में अपने ख्वाबों में कभी बिलीव नहीं छोड़ना चाहिए।
जीतने का वक्त आया तो बैटिंग धोखा दे गई, मिसबाह उलहक पर मोहम्मद यूसुफ के संगीन इल्जाम, लेकिन क्रिकेट बोर्ड क्या कहता है? चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट भारत के लिए कितना फायदा कितना नुकसान? एहसान उल हक के बुलंद इरादे और खवातीन खिलाड़ियों की आवाज मारिया तूर। खेल के मैदान से अब्दुलरशीद शकूर का सलाम। हायर किस्मत, कहां आकर उसने पाकिस्तानी टीम का साथ छोड़ा। वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर टेस्ट सीरीज ना जीतने का 59 साल जमूद तोड़ने के लिए पाकिस्तानी टीम को सिर्फ 188 रन बनाने का मौका हाथ आया, लेकिन एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया, और फिर ऐसा करते करते पाकिस्तानी टीम सिर्फ 81 रन पर ढेर हो गई और दूसरा टेस्ट मैच 106 रन से हार गई। यूं ये सीरीज 2-0 होने के बजाय 1-1 से बराबर हो गई है और अब मिसबाह उलहक के लिए सीरीज जीतने का आखिरी मौका 10 मई से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच में है, जो उनका अलविदाई टेस्ट मैच भी होगा। मैंने ब्रिज टाउन बारबेडोस में मौजूद साबिक टेस्ट क्रिकेटर बाजिद खान से पूछा कि दूसरी इनिंग्स में जो कुछ भी हुआ क्या इसकी तवक्को की जा रही थी, या जो कुछ हुआ वो सबके लिए चौंका देने वाला था?
सेकंड इनिंग्स में ये तो ख्याल जरूर था कि पिच मुश्किल होगा और ये चेस जरा मुश्किल है, स्कोर भी 180 के लगभग, थोड़ा सा ट्रिकी चेस तो जरूर था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान इतनी जल्दी और तेजी से विकेटें गिर गई वो एक्सपेक्टेड नहीं था। जिस किस्म का आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ है काफी शॉकिंग है। 36/6 या 35/5 ये तो ऐसा स्कोर है जिससे आप रिकवर करना बहुत ही मुश्किल। मेरे ख्याल वेस्ट इंडीज को क्रेडिट भी जाता है, उन्होंने बॉलिंग बहुत जबरदस्त की। अगर आप पॉजिटिव खेलते किसी एक स्टेज पे थोड़े से रन चलाते तो शायद थोड़ा सा प्रेशर लिफ्ट होता, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जान ही नहीं छोड़ी, उन्होंने एक ही लाइन एक ही लेंथ पे कंसिस्टेंट बॉलिंग की और स्पिनर तक नौबत ही नहीं आई। आपको अपनी बॉलिंग की तरफ भी देखना पड़ेगा कि सेकंड इनिंग्स में डिटेरिएटिंग पिच पे आपने इतना स्कोर करा दिया।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह उलहक के मुस्तकबिल की फिक्र खुद मिसबाह उलहक को इतनी ज्यादा नहीं जितनी मीडिया और कुछ साबिक खिलाड़ियों को रही है। जाहिर है जब मिसबाह उलहक ने वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए दस्तियाबी और इस दौरे के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया तो उनके मुस्तकबिल के बारे में बहस खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने एक अखबारी इंटरव्यू में मिसबाह उलहक पर यह इल्जाम आयद कर दिया कि वो मिन्नत समाजत और सिफारिश करके वेस्ट इंडीज के दौरे पर गए हैं। मैंने कप्तान मिसबाह उलहक से पूछा कि क्या वाकई ऐसा ही है, क्या वेस्ट इंडीज का ये दौरा किसी सिफारिश या किसी डील का नतीजा है?
देखें ये ऐसी कोई बात नहीं है, बोर्ड से कोई डील नहीं है और ना ही बोर्ड ने ये कहा है कि कोई ऐसी शर्त है कि आप जी आखिरी। उन्होंने ये डिसीजन बिल्कुल बारहा मैंने कहा है कि बोर्ड की इस मामले में हमेशा शुक्रिया अदा किया बोर्ड का कि उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दिया और मुझे ये कहा है कि आप डिसीजन करें जो आपने करना है।
मैंने मोहम्मद यूसुफ के इस दावे या इल्जाम की बाबत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान से भी बात की और पूछा कि मोहम्मद यूसुफ के इस बयान में कितनी सदाकत है।
कोई ऐसी डील नहीं हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है।
क्या भारत आइंदा माह इंग्लैंड में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट करेगा, और अगर उसने ऐसा किया तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे? दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता।
इन दिनों बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की हालत अगले महीने इंग्लैंड में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सांप के मुंह में छछुंदर जैसी है, जिसे ना तो वो निगल सकता है और ना ही उगल सकता है, क्योंकि आईसीसी से आमदनी में हिस्से को लेकर उसकी टकराहट अभी भी बरकरार है। बीसीसीआई आईसीसी से $57 करोड़ मांग रहा है जो आईसीसी को मंजूर नहीं है। ऐसे में बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी को अचूक हथियार के तौर पर अपने हक में इस्तेमाल करना चाह रहा है। भारत पिछला चैंपियन भी है। कमाल और हैरानी की बात है कि क्या बीसीसीआई इतनी नासमझ है या नासमझ होने की चाल चल रही है कि आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट से हटने से उस पर साल 2023 तक आईसीसी आलमी कप और आईसीसी के दूसरे बड़े तमाम टूर्नामेंट में खेलने पर रोक लग सकती है। क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली कहते हैं,
जब आप विड्रॉ करेंगे ये याद रखना पड़ेगा आपको कि 2023 तक का जो साइकिल है उस साइकिल में आप किसी भी आईसीसी इवेंट में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसमें T20 वर्ल्ड कप आता है, उसमें विमेंस वर्ल्ड कप आता है, क्योंकि जैसे आपने चैंपियंस ट्रॉफी से बीसीसीआई अगर नाम वापस लेता है तो ऑटोमेटिकली वो तो आपकी विमेंस टीम भी बर्खास्त हो गई, आपकी जूनियर टीम जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में खेलेगी उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, तो ये इतना आसान नहीं होगा।
दरअसल बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और दुनिया भर में क्रिकेट को जितना देखा जाता है और उसके बदले में जो पैसा मिलता है उसका 75% भारत से ही आता है। जिस आईपीएल के दम पर बीसीसीआई आईसीसी को झुकने पर मजबूर करने के पैंतरे अपना रहा है उसके ये पैंतरे उल्टे भी पड़ सकते हैं और दूसरे मुल्कों के खिलाड़ियों को उनके बोर्ड से आईपीएल में खेलने के लिए मिलने वाले एनओसी पर रोक लग सकती है। इन दिनों आईपीएल 10 के मैचों की कमेंट्री कर रहे भारत के साबिक विकेटकीपर बल्लेबाज विजय दहिया भी चाहते हैं कि बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया भेजे।
कई बार क्या होता है कि एक चीज सामने दिखती है लेकिन उसके नुकसान या फायदे बहुत ज्यादा देर में जाके पता चलते हैं। हम एक बनती हुई टीम देख रहे हैं, जहाँ तक भारतीय टीम की बात करी जाए, एक बनता हुआ कप्तान, एक बनता हुआ सुपरस्टार जिसको भारतीय क्रिकेट, मुझे लगता है कि बहुत कुछ वो भारतीय क्रिकेट को दे सकता है, क्रिकेट बहुत ऊपर तक जा सकती है। तो ऐसे समय में किसी चीजों की वजह से कोई रुकावट आएगी तो फिर हम एक कदम आगे चलने की बजाय 3 या 4 कदम पीछे चले जाएंगे।
अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी बात, लेकिन बात ही बात में बात बिगड़ ना जाए इसे देखते हुए बीसीसीआई में सुधारों को लेकर बनाई गई मुंतजिमिन की कमेटी ने बीसीसीआई की 7 मई को होने वाली बैठक पर अपनी निगाहें जमा दी है। कमेटी का कहना है कि बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट के हक के खिलाफ ना जाए। विजय लोकपल्ली कहते हैं,
आपको स्पॉन्सर्स भी आपको तंग करेंगे क्योंकि ए टीम भेजेंगे तो स्पॉन्सरशिप पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो वहाँ पे भारतीय दर्शक आपको सपोर्ट करने आते हैं दुनिया भर से, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? तो खेलने जाएंगे तो आपकी बेस्ट टीम खेलेगी और जहाँ तक हमने सुना है कि आपके पास कोई पर्याय नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी।
तो गेंद अब बीसीसीआई के पाले में है, आईसीसी जितना पैसा दे रहा है बीसीसीआई उसे ले ले और चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेले, वरना अपने खिलाफ होने वाले फैसलों के लिए तैयार रहे।
पाकिस्तान के असाम उल हक ने गुज़िश्ता दिनों बार्सिलोना के टेनिस टूर्नामेंट का डबल्स टाइटल जीता और अब वो इतवार से मैड्रिड में होने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। मैंने मैड्रिड राबता करके असाम उल हक से बात की और पूछा कि इस साल ये आपका दूसरा टाइटल है, क्या कहेंगे अपनी कारकर्दगी पर?
Been working very hard पिछले 2-3 सालों में, had very some tough losses last year and the year before. लेकिन बात वही है कि अपने गोल्स में, अपने ख्वाबों में कभी बिलीव नहीं छोड़ना चाहिए। And as long as आप अपने अंदर सेल्फ बिलीफ होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंट है और अल्लाह के अंदर भरोसा है।
ऐसा मुलक से मैंने पूछा कि गुज़िश्ता साल आप फाइनल और सेमीफाइनल तक पहुंचते रहे लेकिन टाइटल नहीं जीत पाए, तो ये साल शुरू करते वक्त खुद पर कोई दबाव तो महसूस नहीं कर रहे थे?
लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि टेनिस इज अ वेरी वेरी हार्ड एंड टफ स्पोर्ट, वी हैव टू प्ले डे इन डे आउट, अगर इंजरीज भी हो जाए वी हैव टू कोप अप विद देम, हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही तो हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लाइक हॉकी में होता है या फुटबॉल में होता है, आप सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। And I'm playing at the top level, और सारे matches काफी tough होते हैं, and it's not easy to keep winning consistently. There are very few teams or very few individuals जो very consistent basis पे जीतते हैं, जैसे रॉजर फेडर हो गया, नदाल हो गया, and उनके ऊपर भी डाउनफॉल आए थे, लोगों ने सोचा कि शायद नदाल नहीं जी सकता अब कभी भी और रॉजर भी नहीं जी सकता, पिछले 2-3 साल अच्छे नहीं खेले दोनों प्लेयर्स, लेकिन अब दोबारा से उनका रिवाइवल हुआ है।
ऐसा मुलक से मेरा आखिरी सवाल था कि रोहन बोपन्ना के बाद आपने मुतादित पार्टनर्स तब्दील किए, इससे आपकी कारकर्दगी पर कितना फर्क पड़ा है?
पार्टनर्स जो चेंज मेरे हुए वो मोस्टली वाज बिकॉज़ ऑफ द रैंकिंग्स आल्सो, जब आपकी थोड़ी सी रैंकिंग नीचे गिर जाती है देन टॉप प्लेयर्स दे टेंड नॉट टू प्ले विद यू, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट्स आप एंटर नहीं हो सकते, तो जिसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू प्ले विद कंसिस्टेंट पार्टनर्स, और वो आपकी कंसिस्टेंट पार्टनरशिप ना हो तो उसमें थोड़ा सा मुश्किलात तो होती हैं टू कीप स्विचिंग पार्टनर्स एंड स्ट्रेटजीज एंड एवरीथिंग। आई गेस वो टेस्ट था एंड आई लर्न, इट वाज अ लर्निंग कर्व फॉर मी, प्लेइंग विद डिफरेंट पार्टनर्स ऑब्वियसली हेल्प मी एंड मेड मी लर्न मेनी थिंग्स अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, और जिनको मैंने काफी इम्प्रूव किया है अपनी गेम के अंदर भी और अपनी आई गेस पर्सनैलिटी के अंदर भी और अपने कैरेक्टर के अंदर भी, एंड इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ऑल पार्ट ऑफ लाइफ एंड लर्निंग कर्व था। आई लर्न अ लॉट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स व्हेन थिंग्स वर नॉट गोइंग वेल, और अल्लाह का शुक्र है आई एम कमिंग स्ट्रॉन्ग नाउ, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद यही है और बिलीफ भी है कि इंशाल्लाह बेटर थिंग्स एंड मोर गुड थिंग्स आर गोना हैपन इन द फ्यूचर इंशाल्लाह।
اسکواش کھلاڑی ماریا تور کو انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے خواتین سے متعلق اپنے اسپورٹس کمیشن میں شامل کر لیا ہے۔ میں نے ماریا تور سے بات کی جو اب نیو یارک میں رہتی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کمیشن کا کام کیا ہے اور اس میں آپ کی کیا ذمہ داری ہوگی۔
دیکھیے، میں نے ہمیشہ جو ہے وومن امپاورمنٹ اور اکویلٹی کے لیے بات کی ہے، اور اسپورٹس کے لیے، اسپورٹس سے ہم، میں سمجھتی ہوں کہ اسپورٹس سے ہم امن قائم کر سکتے ہیں، اور اسپورٹس کو ایک ٹول کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں، پیس کو پروموٹ کر سکتے ہیں اسپورٹس کے ذریعے۔ میرا جو رول ہے وومن ان اسپورٹس کمیشن میں، میں یو نو آئی او سی کے سیشنز کو، یا ایگزیکٹو بورڈ جو ہے آئی او سی کو، آئی او سی کی یا پریزیڈنٹ جو ہے آئی او سی کے، ان کو میں ایڈوائز کرتی رہوں گی جو رائٹس ہیں خواتین کے یا لڑکیاں جو ہیں جو اسپورٹس کھیلتی ہیں، ان کے رائٹس کو اور ان کی ویل بینگ کو پروموٹ کریں۔ اور اس کے علاوہ اسپورٹس کو ہم ایک جینڈر اکویلٹی کے لیے اور امپاورمنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں ایز اے ٹول۔ ہمیں اویئرنیس ریز کرنی ہوگی ہراسمنٹ کے حوالے سے، اور ابیوز جو ہے اسپورٹس میں جو ہوتی رہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی۔
اور ماریا تور کی اسی گفتگو پر اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔